Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने भ्राता जी के साथ एक विषय पे चर्चा की थी कि कोलकाता से हमारे पास फ़ोन कॉल आया था। माता जी की उम्र 68 इयर्स थी, उनके पति 75 इयर्स ओल्ड हैं, एक ही बिटिया थी उनकी, उन्होंने भी PhD की, शादी हुई। शादी के बाद जब वो लोग यहीं मुंबई में थे तब वो उनके पास जाया करते थे, लेकिन उनके दामाद का व्यवहार बहुत ही बुरा था और कभी कभी उन्हें धक्का भी दे दिया करते थे, कभी अपशब्दों का प्रयोग कर दिया करते थे। बिटिया भी चूंकि अब पति के साथ रहना है तो शायद उतनी बात इनसे नहीं कर पाती थी। विदेश चले गए वो, सेटल्ड हो गए थे और वहाँ से वो फ़ोन भी नहीं करते थे। इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा दुख था और उस बात को वो भुला भी नहीं पाते थे कि कैसे उस चीज़ को जो उनके दामाद ने किया था उसे भूलें, और इसका भी दुख कि बिटिया एक ही है, अब वो भी फ़ोन नहीं करती, तो बड़ा अकेलापन महसूस किया करते थे। कुछ अभ्यास भ्राता जी ने दिए थे, वो अभ्यास लगातार वो करते रहे थे और कल ही उनका फ़ोन कॉल आया था। कल दो बहुत अच्छे फ़ोन कॉल आए थे, इसीलिए मैं उनसे शुरुआत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उनका, मैं 2 मास उनके पास रह के आई हूँ, उन्होंने न केवल फ़ोन किया लेकिन बहुत प्यार से मुझे बुलाया और वहाँ रखा, और दामाद का व्यवहार भी, वो जो रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये अभ्यास करके और अब मैं माउंट आबू आना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक नया जीवन मिला है, परिवार में फिर से वो खुशहाली का माहौल आ गया है। इतना अच्छा लगता है ना ऐसे अनुभवों को सुनकर। नागपुर से हमारे पास दूसरा फ़ोन आया। एक माता जी ने बताया कि उनकी बहू, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उन्हें जब फ़ोन आया, ये विद्यालय से जुड़ी हुई हैं, कि बहुत तबीयत ख़राब है, आप आ जाएँ, बहुत दवा भी हो रही है लेकिन बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है कि एक्सपेक्टेड जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल पा रहा है। अब ये वहाँ गई और इन्होंने कहा कि क्या आप मुझे एक हफ्ते तक इसके पास बैठ करके मेडिटेशन करने की इजाज़त देंगे, 1-1 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं। और डॉक्टर्स को क्या था, उन्होंने कहा भले आप प्रेयर करें, मेडिटेशन करें। 1 हफ्ते तक इन्होंने उनके पास बैठ करके अच्छी मेडिटेशन की, प्रेयर की, और 1 हफ्ते के बाद ही वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर के अपने घर वापस आ गए। क्या कहेंगे आप इसे, है ना, प्रार्थना में शक्ति, मेडिटेशन में पावर। इसीलिए आप भी इसे जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा, समस्याएं दूर होती चलेंगी। ये अनुभव हमें संबल प्रदान करते हैं, हमें एक ऊर्जा देते हैं, एक आशा की किरण की तरह हैं कि यदि हम भी अच्छी तरह ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सचमुच सारी समस्याएं निर्मूल होती चली जाती हैं। ऐसे सुंदर अनुभवों के साथ आज के समाधान की हम शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक यू।
जब ऐसे अनुभव आते हैं भ्राता जी व्यक्तिगत, जिनसे हमारी बात हुई हो और वो खुश होकर के जब अपना अनुभव सुनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है।
बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी में सचमुच बहुत पावर है और यदि मनुष्य सच्चे दिल से और एकाग्रता के साथ ही प्रैक्टिस करे, विद फुल फेथ जिसे भावना कहते हैं
जी,
तो हर समस्या हल हो जाती है। चलते फिरते भी लोग सुनाते रहते हैं, बस मिलने आए हैं। मैंने कहा बोलो भाई, मैं तो कहता हूँ अभी टाइम नहीं है, कि नहीं नहीं बस गुड न्यूज़ देनी है कि ये हमारी समस्या थी और ये बिल्कुल ठीक हो गई है। मैंने कहा फिर तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये सच है कि बहुतों की समस्याएं इनसे ठीक हो रही हैं, बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। तो स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में एक मुख्य स्थान दे देना चाहिए।
जी जी जी। ये पहला SMS हमारे पास आया है, ये कहते हैं कि ऐसा हमने सुन रखा है कि भगवत गीता का जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उन्हें विद्या की कमी रह जाती है इस जन्म में। क्या इस टाइम में यदि हम अपनी विद्या सही करना चाहें तो किया जा सकता है? और 35 वर्ष की अब उम्र हो गई है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं विद्या से संपन्न बनूँ क्योंकि विद्या की स्थिति मेरी कम है, मुझे ऐसा लगता है, कृपया मार्गदर्शन दें। भक्ति में ऐसी शायद कहावतें हैं भ्राता जी की, किसी का अपमान किया भगवद्गीता का या धर्मशास्त्रों का तो शायद तुम्हारे पास ज्ञान नहीं रहेगा,
क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथ मनुष्य की श्रद्धा का एक विषय है और इनके प्रति अश्रद्धा या कुछ गलत फीलिंग रखने से मैं समझता हूँ कि इफेक्ट आएगा जरूर, भले उसे पढ़ें या न पढ़ें। किसी चीज में हमारी मान्यता, विश्वास हो या न हो, लेकिन उस चीज को सम्मान देना, इससे रिटर्न बहुत सुंदर होता है सूक्ष्म वाइब्रेशंस का। और गीता तो एक श्रेष्ठ ज्ञान की पुस्तिका है, भले ही लोग आज उसे पढ़ते नहीं हैं, और कई लोग ये भी सोचते हैं कि पता नहीं इसमें क्या है, बड़ी गूढ़ बातें हैं, अपनी समझ से परे की हैं, पढ़ना चाहिए। मैं तो बचपन से पढ़ता आता था और बहुत फायदे हुए जीवन में। अब इनकी आयु 35 साल हो गई है, एक लंबी आयु, और वो पीरियड जिसमें विद्या अर्जित की जाती है इन्होंने पार कर लिया है। फिर भी बुद्धि तो ऐसी चीज है, इसका विकास कभी भी हो सकता है। इसे अब सत्य ज्ञान को सम्मान देना चाहिए। मान लो श्रीमद् भगवत गीता न भी पढ़े तो हमारे यहाँ वही सत्य ज्ञान सहज भाषा में दिया जाता है, जिसको समझने में किसी को भी कोई कठिनाई नहीं होती। और राजयोग के बल से, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान से विवेक शक्ति बढ़ती है, और विवेक शक्ति माना बुद्धि की शक्ति, तो बुद्धि तो चमत्कारी हो ही जाती है। मैंने पहले भी कई बार सुनाया है, हमारे यहाँ कई लोग ऐसे आए हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे और बड़े अच्छे कवि बन गए। ऐसे लोग आए हैं जो अच्छे लेखक बन गए, साहित्यकार बन गए। उनसे पूछो कितनी पढ़ाई है, तो बहुत थोड़ी है, उनको भी लज्जा आती है। तो ईश्वरीय ज्ञान से, यानी सत्य गीता ज्ञान से और योग अभ्यास से मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है। क्योंकि बुद्धि सभी के पास बहुत अच्छी है, किसी की वो बुद्धि डेवलप हो पाती है, किसी की नहीं। तो ये भी अगर फिर से अपनी साधना करें और अभ्यास करें तो इनकी बुद्धि का अवश्य बहुत अच्छा विकास हो जाएगा।
जी जी जी, चलिए हम कामना रखेंगे ब्रदर जी, क्योंकि हर एक ये सोचता तो है कि बिना बुद्धि के तो वैसे भी कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं होती, तो उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगला हमारे पास इसमें साहब ब्रदर जी कहते हैं, ओम शांति सूर्य भाई जी, लगभग 3 साल से मेरे सिर में दर्द रहता है, जिससे मैं किसी भी काम में मन नहीं लगा पाता हूँ, किसी वर्क पे फोकस नहीं कर पाता हूँ सिर दर्द के कारण। इसका जो कारण है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स को भी ये पकड़ में नहीं आ रहा है। ध्यान बार बार सरदर्द की ओर ही मेरा चला जाता है, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ और कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। तो कृपया उपाय बताएं कि क्या किया जा सकता है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये शारीरिक बीमारी है या विचारों से है, क्या है?
देखिए, ये सिर दर्द ऐसी चीज है, इसके सैकड़ों कारण होते हैं और कभी कभी डॉक्टर की पकड़ में आता ही नहीं। शारीरिक कारण भी होता है, जन्म से ही कोई चीज चली आ रही हो इस शरीर में और उसका कोई विकसित रूप न हो जो डॉक्टरों की पकड़ में है, क्योंकि डॉक्टरों की तो पकड़ में वही आएगा ना, बाहर कुछ दिखाई दे रहा उसका लक्षण, कोई तकलीफ हो रही हो। लेकिन कहा यही जाता है कि सिर दर्द अपने में कोई बीमारी नहीं है, वो किसी बीमारी का लक्षण है, किसी बीमारी की अभिव्यक्ति है, उसका इफेक्ट हो रहा किसी चीज का। मान लो भोजन हजम अच्छा नहीं हुआ तो सिर भारी हो जाएगा, तो इंडाइजेशन का इफेक्ट होता है, बहुत थक गए, बहुत टेंशन हो गई तो भी हो जाएगा। अभी इनको ये बात भी जानने की आवश्यकता नहीं कि ये क्यों हो रहा है। मैं एक तो फिजिकल चीज पहले इन्हें बताना चाहता हूँ। मेरे अब तक के अनुभव हैं कि बहुत सिर दर्द वालों को ये करने से काफ़ी फायदा हो गया है, और वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यद्यपि लोगों ने प्राणायाम को भी योगा कह दिया है, प्राणायाम तो योग का एक हिस्सा है। देखिए, योग जो महर्षि पतंजलि ने प्रारंभ किया था उसके 8 अंग थे, हैं उसमें से आसन और प्राणायाम पहले, ये दो हिस्से हैं। तो लेकिन ये प्राणायाम एक तैयारी करा देता है मानसिक रूप की, ताकि योग साधना में हमारा मन बहुत अच्छी तरह एकाग्र हो सके। तो एक तो इन्हें 10 मिनट रोज खाली पेट सवेरे या शाम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना चाहिए। इससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है, और यदि ब्रेन की कोई चीज इसका कारण है तो वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। और दूसरा, पानी चार्ज करके पीना। दूसरी विधि है स्पिरिचुअल, ये फिजिकल। स्पिरिचुअल में पानी चार्ज करके पीना और ब्रेन को 10 मिनट एनर्जी देना। मैं अपने दर्शकों के लिए फिर से दोनों चीजें स्पष्ट कर दूं, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कैसे करें। तो पानी चार्ज करने का अर्थ है, पानी गिलास में लिया, उस पर दृष्टि डाली और 7 बार संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। दोनों संकल्प बहुत सुंदर हैं। इससे पानी चार्ज हो जाता है, वो दवाई बन जाता है, और हमारे बॉडी में क्योंकि 70% से ज्यादा पानी है, तो वो चार्ज वाटर उस पानी में मिलके सारे पानी को प्योरीफाई करता है और कई शारीरिक बीमारियां इससे ठीक हो जाती है। दूसरी चीज है ब्रेन को एनर्जी देना। इसकी सिंपल विधि है कि दोनों हाथ ऐसे रब करते हुए 2-3 बार याद कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो ये जो शक्तियों के वाइब्रेशंस हैं ये हाथों से बाहर निकलने लगेंगे, चेक कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। बहुत अच्छा अट्रैक्शन वाइब्रेशंस दोनों हाथों में आ गए। अब ये ऐसे मल कर सिर पर लेफ्ट राइट हाथ रख लें, एक मिनट आंखें बंद करें और संकल्प करें कि ये प्योर एनर्जी मेरे ब्रेन को बिल्कुल परफेक्ट कर रही है, नॉर्मल कर रही है। एक मिनट रखें, ऐसा 10 बार कर लें, फिर तीसरी बार। तो इससे ब्रेन रियली बहुत अच्छा हो जाता है। जिनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ उनका भी हो जाएगा। माताएं अपने बच्चों का कर सकती हैं, उनके ब्रेन की कई सुसुप्त शक्तियां जागृत हो जाएंगी इससे। और ब्रेन यदि परफेक्टली काम करने लगता है तो अनेक बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो इनसे इनका सिर दर्द निश्चित रूप से ठीक होगा।
बिल्कुल, चलिए हमारी भी कामना रहेगी भ्राता जी, क्योंकि सिर दर्द में वैसे भी व्यक्ति को कुछ सूझता
नहीं, थक जाता है, व्याकुल सा रहता है, न उसकी खुशी रहती, न वो हंस पाता, नींद भी कभी अच्छी नहीं आ पाती। तो कुछ बीमारी न होकर भी ये भयानक बीमारी बन जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपको भी जब इससे निजात मिल जाए तो जरूर खुशखबरी हम तक पहुंचाइएगा कि कैसे आप इससे मुक्त हुए, कितने दिन आपने अभ्यास किया। हमारी श्रेष्ठ कामना आपके साथ है कि जल्दी आप इससे मुक्त हो जाएं। प्रताप जी, अगला हमारे पास SMS है, ये कहते हैं कि मैं 21 साल की हूँ, मैं 2 मंथ से सेंटर जा रही हूँ, मैं स्टडी करना चाहती हूँ लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे स्टडी करने से मना किया है क्योंकि मेरी आईज बहुत वीक है, मुझे सब कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, मेरी जो एक कान है वो भी डेड है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर आ रहा है, तो लेकिन मैं स्टडी करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, डॉक्टर्स मना कर रहे हैं बेटा जी, ऐसी सारी तकलीफ।
देखिए, पहले लाइफ है, लाइफ इज इम्पोर्टेंट
जी,
स्टडी थोड़ी बाद में भी हो सकती है। अब ये 6 मास, ये 2-3 चीज जो मैंने पिछली केस में बताई इनकी भी ब्रेन की कोई चीज ठीक से काम नहीं कर रही है, आंखों को जो नर्व जा रही, किसी वो सिकुड़ जाती हैं, किसी की डल हो जाती है,
और एक कान भी डेड हो गया,
कान को भी जो नर्व जा रही जो ब्रेन से जोड़ रही हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो कभी कभी वो चीजें इतनी वीक होती हैं कि डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने का वो नहीं लेते हैं जिम्मेदारी, क्योंकि कुछ भी डैमेज होने का खतरा बना रहता है। तो इनको एक तो पानी चार्ज करके पीना, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये थोड़ा सा करें, ये देख लें कि इनको कोई कष्ट तो नहीं होता, भले 2 मिनट से प्रारंभ करें, धीरे धीरे उसको 3 मिनट बढ़ाएं, फिर 5 मिनट तक ले जाएं, और भले 4-5 मास में 10 मिनट तक रोज ले चले, या ऐसा करें 1-1 मिनट 3-4 बार कर लें सारे दिन में, और ब्रेन को एनर्जी देना इनको, क्योंकि ये सब चीजें ब्रेन से कनेक्टेड है, वही विधि 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को, इसमें कोई दबाव पड़ता नहीं ब्रेन पर, कोई तकलीफ नहीं होती, और इनकी अगर नर्व वीक हैं वो स्ट्रांग होने लगेंगी और दोनों चीज इनकी ठीक हो सकती हैं। और उसके बाद ये अपना पढ़े, कोई बात नहीं, अभी इनको ध्यान देना, ना टीवी ज्यादा देखें, ना नेट का ज्यादा प्रयोग करें, क्योंकि आईज उनमें लगती है ना, कंसंट्रेशन होता है, ये पढ़ेगी, अब जबरदस्ती ये पढ़ तो ले, लेकिन इसकी आई फिर इतनी वीक हो जाए कि फिर वो आगे का जीवन अच्छा,
आंखें भी कमजोर हैं, हाँ। और सब चीजें हिलती डुलती हाँ। भी दिख रही हैं, हाँ। चक्कर भी आ रहा है, हाँ। तो बहुत सारी तकलीफें एक साथ हैं, हाँ। तो प्रताप जी ये सारी चीजें कितने दिन में आपको लगता है यदि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जाए तो ठीक ठीक होने लगेंगे?
देखिए, मैं तो कहा कि अगर ये बहुत अच्छी तरह फोकस करें और टाइम दें तो 3 मास में बहुत अच्छा अनुभव कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि इनकी सीरियस स्थिति है, ये कोई दवाई भी लेती रहे, भले ही 2 मास के बाद लें, मेडिसिन, मेडिकल साइंस भी काफ़ी मदद कर रही है मनुष्य को, वो भी ये करें और ये अभ्यास भी करें, तो 6 मास में मैं समझता हूँ इनका पूरा आगे का जीवन सहज और सफल हो जाएगा।
बिल्कुल, गीता में एक श्लोक है कि जहाँ तक पाप और पुण्य की जो बात आ रही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्तिस्यामि मा शुच, तो परमात्मा की शरण में भी आ जाने से क्या हमारे पाप, यदि हमने बहुत पाप किए हैं, वो नष्ट हो जाते हैं?
बात ये बहुत ही गुह्य है, परमात्मा की शरण में चले जाना और फिर परमात्मा ऐसी आत्मा को स्वीकार करे, दोनों चीजें है ना इम्पोर्टेंट। एक राजा हार कर दूसरे राजा की शरण में जाता था, कभी कभी वो राजा कमजोर होता था, कह देता था ना भाई मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगा, वो राजा बड़ा पावरफुल है, मेरे पे भी अटैक करेगा, मेरी भी राजा जाएगी, इसलिए तुम कहीं और चले जाओ। तो प्रभु शरण में आ जाना, माना अपने को पूरी तरह समर्पित कर देना
जी।
और इसके बाद की जो बात है असली वो है कि जब हमने अपने को पूरी तरह उनके हवाले कर दिया तो जैसे वो कहें वैसे करना। अब वो अच्छी तरह सिखाते हैं पवित्र बनो, पवित्र बनना सबसे बड़ा पुण्य है। अब ये पाप कर्म छोड़ दो, दूसरों को दुख देना छोड़ दो। और उनकी विशेष आज्ञा पुनः वही होती है कि निरंतर मुझसे बुद्धि योग जोड़ो, योग युक्त हो जाओ, तो ये पाप सभी तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे।
बिल्कुल, मतलब केवल समर्पित नहीं होना है, शरण में नहीं आना है, लेकिन उनकी आज्ञाओं पर भी हमें चलना होगा, तब जाकर के हमारे पाप नष्ट होंगे। पता जी, जैसे आपने कहा कि एक वो बच्चा जो है वो रोता ही रहता है, एक ऐसा ही SMS आया है, ये कहते हैं कि 2.5 मास की एक बच्ची है, वो 10 दिनों से बिल्कुल सो नहीं रही है, लगातार रो रही है और साथ ही वो डर भी रही है। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वो डॉक्टर्स भी कुछ पकड़ नहीं पा रहे हैं और जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही है उसका, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वही वाली स्थिति,
बिल्कुल वही स्थिति है और हो यहीगा, क्योंकि 2.5 मासी है, उसने तो न किसी को कुछ बोला है न उसको किसी ने कुछ बोला है, ये पूर्व जन्मों के उसके विकर्म जागृत हो गए हैं, इसलिए वो सो नहीं पा रही। ये बिल्कुल सत्य हो सकता है कि पूर्व जन्म में, इससे पहले ही जन्म में उसने लंबा काल अनिद्रा की स्थिति में व्यतीत किया हो, क्योंकि ये बीमारी भी आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। इसमें बस दूसरा व्यक्ति जो उसको मदद कर सकता है, उसकी माँ करे, दादी करे, जो भी उनके यहाँ राजयोग का अभ्यास करते हैं, उसके पास बैठकर, थोड़ा आसपास बैठकर 1 घंटा पावरफुल राजयोग का अभ्यास करें। इससे उसको गुड वाइब्रेशंस जाएंगे और उसके वो विकर्म नष्ट हो जाएंगे जो तत्काल विकर्म है, जो इफेक्ट करने लगे हैं उसको बहुत ज़्यादा, और वो रिलैक्स होगा बच्चा। दूसरी चीज ये है कि उसके ब्रेन को एनर्जी दी जाए, क्योंकि ये जो विकर्म है ये आजकल मुख्य रूप से क्या काम कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छे डॉक्टर इस बात को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कैसे, कि ब्रेन को ज़्यादा हाइपर एक्टिव कर दिया है उन्होंने। अब ब्रेन उनका शांत ही नहीं हो रहा है बच्चे का, ब्रेन जब तक शांत नहीं होगा तो बच्चा रिलैक्स होगा नहीं और वो सो नहीं पाएगा
जी।
तो उसका ब्रेन जो हाइपर एक्टिव हो गया है उसको एनर्जी देनी चाहिए, चाहे सिर पर हाथ रख के, चाहे थोड़ा पास में हाथ रख के, कोई भी अच्छा राजयोगी ये काम करे तो उसका ब्रेन जल्द ही नॉर्मल और शांत हो सकता है और बच्चा सो जाएगा।
बिल्कुल प्रति जी, कई बार लोग ये कहते हैं कि किसी की नजर लग गई है बच्चे को, क्या ऐसे नजर लगने वाली भी बात?
बच्चों को ये बहुत होता है और ये तो एक बड़ी ही कॉमन और वेल नोन बात है कि बच्चों को नजर बहुत ज्यादा लगती है, और ये तो उसके माँ बाप या दादी भी जानते हैं। अगर ऐसा हो तो बच्चे की नजर भी उतार देनी चाहिए, अगर कुछ उसका ही प्रभाव है तो जल्दी ठीक हो जाएगा।
बिल्कुल, एक बार बताइए जी, हमारे पड़ोस में जब मैं छोटा था तो हमारे पड़ोस में ही एक छोटा सा बच्चा हुआ, तो वो बच्चा भी लगातार रोता रहता था, तो किसी ने सजेस्ट किया उनके पेरेंट्स को कि शायद आपने अपने कुल देवता की ठीक से पूजा नहीं की है, उसकी पहले पूजा करो, वो शायद रुष्ट हो गए हैं इसलिए बच्चा लगातार रोता, वो भी लगातार 2-3 महीने तक रोता, दिन रात रोता था। तो उन्होंने अपने कुल देवता की पूजा अर्चना की तो बच्चा शांत हुआ, तो ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्या होता है।
हर जगह एक कुल देवी या कुल देवता होते ही हैं
जी,
जैसे गुजरात का इधर हमारी और अंबाजी है, और भी 1-2 देवी देवता जहाँ तहाँ रहते हैं, नॉर्थ की भी दुर्गा देवी हिमालय में सहारनपुर के ऊपर माँ शाकुंभरी देवी रहती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिनको लोग कुल देव या कुल देवी कहते हैं वो रहते ही हैं। और क्योंकि एक भावनात्मक रूप से मनुष्य उनसे जुड़ा रहता है, मैंने जैसे कहा कि ये सब कारण मूल रूप में तो मनुष्य के विकर्म का प्रभाव ही होते, पर उनका प्रत्यक्ष इफेक्ट ये भी हो जाता है बच्चों पर, इसलिए ऐसे में पंडित जो भी राय दें अपने कुलदेव या देवी को भी उस तरह प्रसन्न कर लेने से कई बार गुड रिजल्ट सामने आते हैं।
मतलब ये भी किया जा सकता है। राज्यों का अभ्यास भी करें और यदि ऐसा लगता है तो ये कर
ये
सकते
भी
हैं। प्रदीप जी, अगला हमारे पास SMS आया, ये कहते हैं ओम शांति भाई जी, हम यह पूछना चाहते हैं जब हमारा माइंड किसी टेंशन से डिस्टर्ब हो तो उसे शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? लगता है कि सबके माइंड कहीं ना कहीं टेंशन में उलझ ही जाते हैं।
किसी का स्टडी का टेंशन, तो किसी को एग्जाम का टेंशन,
किसी को जॉब नहीं मिल रहा
का, तो किसी को अफेयर का, वो ज्यादा समस्या चलती जा रही है आजकल। और जॉब का भी टेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जिस तरह के संकल्प मनुष्य को टेंस कर रहे हो, वहां अपने संकल्पों को ठीक करें, क्योंकि उस टाइम कोई ना कोई निगेटिव संकल्प, कोई डर का संकल्प, कोई ऐसा संकल्प के पता नहीं क्या होगा, कोई भावनात्मक संकल्प मनुष्य को इफेक्ट करता रहता है और वो टेंस करता रहता है। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान और योग में हमें एक ऐसा सुंदर ज्ञान मिला है कि हम अपने को अनेक जगह रिलैक्स कर लेते हैं। मान लो एग्जाम ही है और हम ये मान लेते हैं कि बच्चा कमजोर है, उसको टेंशन हो रहा है, अब कमजोर है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं क्या होगा, ये सोचना उसके लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। तो अपने विचारों को यहाँ चेंज करें कि भाई चलो जैसे भी क्वेश्चन आएंगे, मैं जितना भी उनका आंसर लिख पाऊंगा उतना लिखूंगा, अब जैसी मेरी तैयारी है, जैसी मेरी विवेक शक्ति है, ओके आई विल डू माई बेस्ट, और जो भगवान की इच्छा होगी मिल जाएगी। तो अपने को थोड़ा लाइट कर दे तो इस तरह से टेंशन समाप्त हो जाएगी। जॉब की टेंशन है तो हम उसमें कई विधियां बताते हैं, बहुत आत्मविश्वास के साथ भगवान में भरोसा रखते हुए और ये संकल्प करते हुए कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, ऐसे योग अभ्यास कर लें तो जॉब भी मिल जाएगी, टेंशन भी समाप्त हो जाएगी। रही बात है फेयर की, ये तो कहीं किसी का किससे जुड़ जाता है और उसमें कहीं ना कहीं टकराव चलता ही रहता है, क्योंकि युवक भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और एक दूसरे से जल्दी हर्ट होते हैं। उसने उसकी बात नहीं सुनी, उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की, बस चलो हटो, और फिर ये डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है। तो इन चीजों को ज्ञान के बल से लाइट कर देना और अपने को बहुत लाइट रखना, यही इस तरह की टेंशन का तुरंत समाधान होता है।
जी जी जी, चलिए भ्राता जी, हमारी तो कामना रहेगी कि सभी तनावों से मुक्त रहें और सबका जीवन आनंद और खुशहाली से भरा हो, क्योंकि तनाव में भी व्यक्ति सही निर्णय नहीं कर पाता, और वो भी सिर दर्द की जैसे हम बात कर रहे थे, तो कई बार ये सिर दर्द भी हो जाता है। चलिए आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, किसी ने कहा है कि कलयुग के लिए या आज के दौर के लिए कहा है कि तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि तनाव हो जाता है तनाव ना होने पर। तो एक कॉमन सी चीज़ हो गई है कि तनाव हमारे साथ जुड़ सी गई है, लेकिन ये एक सामान्य स्थिति नहीं है। हम सब चाहते हैं कि मन हमारा शांत हो, मन हमारा आनंदित हो, हम एकाग्र चित्र हैं और जो भी कार्य करें उसका संपूर्ण रूप से आनंद लें। और ये छोटी छोटी बातें जब आती हैं तो तनाव की स्थिति तब पैदा हो जाती है जब मन थोड़ा सा कमज़ोर होता है। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है उसे छोटी छोटी बातें बिल्कुल लगती ही नहीं। जैसे कहते हैं ना कि यदि हाथी बाजार में चल रहा हो तो इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देता। योग, राजयोग हमें हाथी बना देता है, अर्थात बहुत शक्तिशाली बना देता है, जो छोटी छोटी बातों की ओर हम ध्यान भी नहीं देते, आ जाती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। हर किसी ने टेंशन के लिए ये भी कहा है कि टेंशन उसे हो जिसके टेंशन हो। हमारे तो टेंशन है नहीं ना, अर्थात 10 पुत्र जिसके हो उसे समस्या हो इस महंगाई के ज़माने में, हमारे तो ऐसे हैं नहीं। तो बातों को बहुत हल्का कीजिए और हल्केपन में ही बातों को लेते हुए आगे बढ़िए। राजयोग का अभ्यास आपको इसमें बहुत 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 मदद करेगा। और जैसे मैंने शुरुआत की थी मित्रों, जैसे जैसे सुंदर अनुभव आपके पास आते जाते हैं, तो सच मानिए जैसे आपको अच्छे अनुभव होते हैं और अनुभव हम तक पहुंचते हैं तो हमें भी बेहद खुशी होती है। इसीलिए जो सुंदर अनुभव योग करने के बाद आप लोगों को हो रहे हों, वो अनुभव हम तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि आपके अनुभवों को हम अन्य आपके भाई बहनों तक पहुंचाएं, ताकि उनका भी उमंग उत्साह बढ़े। तो अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।